اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارن صلوات پڑھے محمد والا عزاداران حسین رضوی کالج بامبے کی یہ تھرڈ مجلس ہے تیسری مجلس ہے کرنٹ ایشوز اور تربیت اولاد کے ٹاپک پر پہلی مجلس سے میں یہی معروضے کر رہا تھا کہ کرنٹ ایشو اتنے ہیں کہ اگر انسان ان ایشوز کو دیکھے تو پھر اندازہ ہو کہ ہم کتنے پرابلمز میں آ سکتے ہیں اور اولاد کی تربیت بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم سمجھ کچھ رہے ہیں اپنے انداز سے بچوں کی تربیت دیتے ہیں لیکن ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا لڑکی ہو یا لڑکا ہو انسان پیرنٹس پوری ٹرائی تو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرابلم سے سالو کر لے لیکن یہ ایسا ایشو ہے کہ دنیا بھر میں آج 21st century کا یہ سب سے مین ایشو ہے بچوں کی تربیت بامبے میں پھر بھی تھوڑا سکون ہے زیادہ پرابلمس نہیں ہیں ویسٹ میں اس وقت سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے بچوں کی تربیت یہ آج اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کو سکون کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے کہ چلو ہمارا ایشو نہیں ہے ویسٹ کا ایشو ہے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگ رہی ہے تو آپ یہ بیٹھ کے گھر میں سکون سے نہیں بیٹھنا ہے آپ کو کہ ابھی تو پڑوس میں لگی ہے ہمارا گھر تو سیف ہے یہ بیٹھ کے کوئی قریب میں نہیں بیٹھنا اس لیے کہ اگر آج پڑوس میں لگی ہے تو وہ آگ بڑھ کے ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے تو اسی طرح یہ ایشو ایسا ہے کہ اگر کوئی باہر ہو رہا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے فوراً کیئرفل رہنا ہے کہ کہیں یہ بیماری یہ ڈیزیز یہ ہمارے گھر تک نہ آ جائے اور اگر ہمارے گھر تک آ جائے اس لیے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو آپ اور ہم کیا ہیں نبی کا بیٹا نوح نبی کا بیٹا گمراہ ہوا نہیں ہوا کیا نوح نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی تھی کوئی انہوں نے اگنورنس کیا تھا بچے کی تربیت میں چھوڑ دیا تھا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اس لیے کہ نبی ہے معصوم ہے کبھی نبی اس طرح اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتا جو باہر ٹیچ کر رہا ہے وہ گھر میں بھی ویسی کرنا ہے اس کو نبی ہے معصوم ہے لیکن جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا اور ایسا گمراہ ہوا کہ چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا وہ اچھا خاصا مطلب گرون اپ کہہ سکتے ہیں گرون اپ چائلڈ تھا وہ 20-25 ایئرس کا تھا جب طوفان نوح آیا کیا کہا نوح نے کیا کر رہا تھا نوح بار بار اپنے بیٹے کو بول رہے تھے قرآن ہے پورا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹے کو بول رہے تھے کہ بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا تو میری کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اس نے کیا کہا آپ دیکھیں کہ باہر نو ٹیچ کر رہے ہیں اسلام کو باہر نو ٹیچ کر رہے ہیں ٹیچنگز پورے اسلام کے لیکن گھر میں کیا ہوا گھر کا بیٹا اون بیٹا کوئی دوسرا غیر بچہ نہیں تھا نو کے گھر میں پالا نو کی بیوی نے پالا سب گھر کا ماحول ان کا اسلامک تھا لیکن اس کے باوجود بھی نو نے پکارتا رہا نو پکارتا رہا کہ بیٹا پہاڑ پہ مت جا یہ ماؤنٹین نہیں بچائے گا اس نے کہا بابا آئی ڈونٹ کیئر آج ماؤنٹین بچائے گا آپ کی کشتی نہیں بچائے گی ایک سٹیج ایسا آیا نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے تو نے پرومس کیا ہے कि तू मुझे और मेरी औलाद को सबको बचा लेगा, मेरा बेटा है जो डूब रहा है। ऊपर से आवाज आई, लैसा में नहले नू, ये तुम्हारे अहल से नहीं था। तो नबी का बेटा गुमराह हो सकता? खाली हम बॉम्बे में ये रहकर ये सोच के कि मेरे घर का माहौल अच्छा, मेरी औलाद अच्छी, मैं नेक, मैं इबादत गुजार, औलाद भी सही रहेगी, ये गफलत से निकले हम बाहर। इसीलिए कुरान या अय्युह लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन कहकर हमारे शऊर को बेदार कर रहा है कि अए ईमान वालो, अए अली वालो, अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि तुम नमाज पढ़ते हो, तुम दीन पे अमल करते हो, तुम हर वो बात पे शरीयत की अमल करते हो, तो ये समझ के जिंदगी मत गुजारो। इसलिए कि तुमको अपने आप को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है। अगर औलाद को तुमने नहीं बचा, तुम ये समझ के जिंदगी गुजार दी कि मैंने हम इबादत गुजारे, ये जो तसव्वुर है ना, ये क्रिश्चियनिटी का तसव्वुर है, ये जूस का तसव्वुर है कि तुम अपने आप को बचाओ। इस्लाम दुनिया में कोई मजहब ये नहीं कहता कि तुम भी प्रोटेक्ट करो अपने आप को और औलाद को भी प्रोटेक्ट करो, ये सिर्फ इस्लाम कह रहा है। क्रिश्चियनिटी में और यहूदीज्म में क्या है कि तुम इबादत कर लो, तुम नेक बन जाओ, तुम बिल्कुल पायस इंसान बन जाओ, तुम जन्नत में चले जाओगे। इस्लाम बोलता नो, तुमको पूरे माशरे को लेकर चलना है, खानदान को लेकर चलना है, औलाद को लेकर चलना है, वाइफ को लेकर चलना है। कहीं भी कोताही हुई तो यही औलाद, यही बेटा, यही बेटी रोजे मैशर अगर जहन्नम में जाएगी तो तुमको भी जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा उस आग में जहां इंसान और पत्थर जलाए जाएंगे। इतना सीरियस कुरान का यह इरशाद है। किसी और से बात नहीं कर रहा कुरान, हमसे बात कर रहा, हमसे मौला के चाहने वालों से बात कर रहा। हमको प्रोटेक्ट करना है, दुआ करना है कि हमको करना क्या है, औलाद को कैसे नहीं बचाएंगे अगर औलाद नहीं बची। हर चीज में तो हम औलाद की हर चीज, हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ, जब से हर पेरेंट की, हर मां हर बाप की एक ही ख्वाहिश है कि बच्चा अच्छा निकले, लड़का हो लड़की हो, उसके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, उसके हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, हर चीज उसकी, उसके सुकून के कोई ऐसी चीज ना हो। यहां तक के दोस्तों बेहतरीन एजुकेशन दे, उसके कपड़ा, हर चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन कभी भी मैंने किसी मां बाप को यह नहीं देखा, 5% होंगे 10% होंगे, कि मां और बाप ने यह कहा बच्चा पैदा होने के बाद, प्लानिंग पूरी है कि बेहतरीन स्कूल में पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल कोर्स करवाएंगे, उसकी हेल्थ ऐसा करवाएंगे, हर स्टेज एक एक साल के बाद हम प्लान करने लगते हैं। बच्चा बड़ा हुआ, अगर उसकी फिजिक सही नहीं है तो ये कहते हैं कि जाके अच्छा खाओ, अच्छी जाकर एक्सरसाइज कर, हर चीज बच्चे की हर चीज को देख रहे हैं। कभी किसी पेरेंट ने यह नहीं कहा कि मुझे मेरे बच्चे को दीन भी सिखाना है, इस्लाम भी बताना है। एक फॉर्मेलिटी है कि कुरान पढ़वा लो, मौलाना से कुरान पढ़वा लो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं हुई बाबा, कैसे हुई जिम्मेदारी? खाली कुरान पढ़ लेने से हो जाता जिम्मेदारी? एक दफा पढ़ लिया हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? चेक कहां किया, कहां चेक कर रहे हैं? कई चीजें, घर का माहौल ही हमने इस्लाम नहीं दिया तो बच्चा सीखेगा क्या? घर का माहौल हमने वो बनाया जो एंटी इस्लाम माहौल है, एंटी इस्लाम माहौल है। मैंने बड़ा जुमला कहा, अपने अपने घरों में हम खुद चेक करें। मैं इतने बड़े मजमे से रिजी कॉलेज में कह रहा हूं कि आप फौरन दूसरों को चेक मत करो इस जुमले पे कि उनके घर में क्या है, उनके घर में क्या है, उनके घर में क्या है। नो, हमको कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम अपने सगे भाई के घर में चेक करें कि उनके पास क्या हो रहा। नो, सबसे पहले अपने घर में चेक करो, चेक योर सेल्फ कि मैं क्या, मेरा घर कैसा है। भाई के घर की फिक्र मत करो, बहन के घर की फिक्र मत करो, दोस्त के घर की फिक्र मत करो कि उनका माहौल क्या है। चेक ये करो कि हमारे घर की सराउंडिंग क्या है, हमारे घर का माहौल क्या है। अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है, इस्लाम है, तो फिर बच्चों का जो ब्रॉटअप होगा, बच्चों का जो माहौल होगा वो इस्लामिक होगा, एंटी इस्लामिक नहीं होगा। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा पैदा हुआ, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, क्या मां ने एहतियात करना शुरू किया? एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, मां ने कितनी एहतियात की, मां ने कितनी एहतियात की, वो गिजा खाई जो बच्चे इसलिए गए, आप सबको बताएं, जो मां खाती है वो बच्चा खाता है, मां जो लुकमे खाती है, मां जो खाना खाती है, मां जो हर चीज जो मां कर रही है वो बेटा अंदर पेट में कर रहा है। 9 महीने तक बच्चा मां की हर वो गिजा खा रहा है जो मां खा रही है। तो जो बच्चे का फ्लैश बन रहा है, जो बच्चे का ब्लड बन रहा है, किस गिजा से बन रहा है, किस गिजा से? मेरा एड्रेस टोटल यूथ के लिए है, मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मेरी बहनों से बात कर रहा हूं, मेरे भाइयों से बात कर रहा हूं, बस बुजुर्गों से नहीं कर रहा। तरबियत औलाद, अब ये जनरेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ योर जनरेशन इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर कहीं भी आगे पीछे कुछ हुआ तो यू आर रेस्पॉन्सिबल। कितनी गिजा में चेकिंग हुई, कितनी एहतियात हुई, मैं डिटेल में नहीं जाता, आप डिसाइड करो कि कितना हमने 9 मंथ्स, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, कितने वाकयात हैं। जब शेख मुर्तुजा अंसारी, हमारे उलमा में बहुत बड़ा आलिम है शेख मुर्तुजा अंसारी, 100 या 120 ईयर्स हुआ उनकी वफात को, ये वो पर्सनालिटी है शेख की कि जिससे इमाम जमाना अजल्ला ताला फरज शरीफ, चार या पांच दफा मुलाकात की, इतनी बड़ी पर्सनालिटी शेख मुर्तजा, कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है। 4-5 टाइम्स, एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ कि डायरेक्ट इमाम नीचे है, शेख ऊपर है, ऐसा बात है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इनकी मां से पूछा गया था कि आपने बच्चे की परवरिश कैसे की, बच्चे का ब्रॉटअप कैसे किया, तो इनकी मां ने कहा था, मैं डिटेल में नहीं जाती, मैं एक वाकया बताती हूं, एक इंसिडेंट बताती हूं कि अगर मेरा ये बेटा नबी बन जाता मुझे हैरत नहीं होती। लोगों ने, औरतों ने पूछा कि क्यों, तो कहा इसलिए कि मैंने इसकी परवरिश में, इसके ब्रॉटअप में इतनी एहतियात की, प्रेगनेंसी से लेके विलादत तक, विलादत से लेके सिने बुलूग तक, यानी 14-15 ईयर्स तक मैंने इतना प्रोटेक्शन किया। सबसे पहले उस औरत ने कहा कि मैं कभी भी एक लुकमा भी अपने पेट में हराम का नहीं लिया, मैंने बगैर वजू के इसको फीड नहीं कर दी थी, इसके एक एक लुकमे का मैं इंतजार करती थी किस तरह से खिलाना है, पाकीजा तरीके से। उसके बाद यह नतीजा हुआ कि यह शख्स, बच्चा आगे बढ़कर शेख मुर्तजा बनता है। शेख मुर्तजा बनने से इतना बड़ा स्टेटस मिला कि कोई मामूली स्टेटस नहीं है। हम बड़ी इजी तरीके से सुन रहे हैं, बहुत इजी कि इमाम मिले, सो व्हाट, इमाम मिले, नो, ये सबसे बड़ा स्टेटस है कि फर्जंद फातिमा, जमीन और आसमान का मालिक आके खुद मिले, ये सबसे बड़ा स्टेटस है। दुनिया का स्टेटस नहीं है, अगर इमाम आके आपसे मिले तो इससे बड़ी बात क्या है, हमको चाहिए क्या? और हर मां, मेरी ख्वाहिश है कि रिजवी कॉलेज का जब ये अशरा खत्म हो तो बॉम्बे में जो जो मेरी मजलिसें सुन रही है और इस वक्त इंटरनेट पे पूरी दुनिया सुन रही है, जो जो मेरा मैसेज ले रही, उन पेरेंट्स से, उन लड़कियों से, उन लड़कों से मेरी ख्वाहिश है कि जिनकी अभी न्यूली मैरिड है, शादी होने वाली है, प्लस प्लान योर सेल्फ, प्लान योर सेल्फ। उसके बाद जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो, बच्चे की खुशी आए, तो वो गिजा खिलाओ, वो लुकमा खिलाओ कि तुम्हारा घर से, हर घर से मुर्तुजा अंसारी निकले, हर घर से निकले। देन यू आर गोइंग टू सी द ब्लेसिंग ऑफ इमाम। फिर जो आज करंट इश्यू में जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। एक एक लुकमा हम खिलाते क्या है, हम क्या खिला रहे हैं, अब मैं क्या करूं। हम इतनी एहतियात भी नहीं करते कि घर में सर्वेंट कौन है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मेंबर से, आप बेहतर समझते हैं मेरा इशारा क्या है। कहते हैं नहीं मौलाना, वो दो घंटे के लिए आते हैं, वो लोग साफ करके चले जाते हैं। वेरी गुड यार, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाते। तुम्हारे बच्चों की तरबियत क्या होगी, क्या गिजा खिला रहे हो, खुद जाके बाहर क्या खा रहे हो। क्या हम 21st सेंचुरी में है, क्या लीलियंसी नहीं है इस्लाम में। रसूल को नहीं मालूम था 21st सेंचुरी आने वाली है, अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि 21st सेंचुरी आने वाली है, बॉम्बे में शिया कहेंगे बाबा कैसे खाएंगे, जिंदगी कैसे गुजारेंगे, या वो एक्सेप्ट करो या ये एक्सेप्ट करो। रसूल को मालूम था तो रसूल ने क्यों नहीं लीलियंसी दी। एक चीज याद रखे, वो इस्लाम मत लें जो आपको सूट करता है, प्लीज वो इस्लाम मत लें जो आपको सूट करता है, वो इस्लाम ले जो इस्लाम है मोहम्मदी है। मैं आज एक वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि वेयर आर वी गोइंग। अगर हम आज एहतियात नहीं करते, आज वो ईंट, वो ब्रिक, वो बिल्डिंग की बुनियाद, वो फाउंडेशन, अगर हम फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करते, बिलीव मी एक स्टेज ऐसा आएगा कि मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है खून के आंसू रोते हुए, रोते हुए कहते हैं कि हर चीज इस वक्त हमारे पास है, हमारी औलाद हमारी नहीं है। हर चीज है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब है हमारे पास, बट हमारी औलाद हमारी नहीं है। किसके लिए बनाया ये, किसके लिए ये बैंक बैलेंस किया। तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं है, सबसे पहले चेक करो कि तुम फूड क्या कर खा रहे हो, गिजा क्या कर रहे हो। उसके बाद बच्चा सुन क्या रहा है, सुन क्या रहा है। सैयद रजी, नहजुल बलागा का राइटर, इनके बड़े भाई सैयद मुर्तुजा, प्लीज गौर से सुने, नहजुल बलागा का राइटर सैयद रजी, इनके एल्डर ब्रदर सैयद मुर्तुजा, ये लोग 5-6 ईयर्स के थे, मदरसे में गए नजफ अशरफ में, अल्लाह हमको भी ज्यादा नसीब करे इंशाल्लाह, मदरसे में थे, पढ़ के जब आते थे 2-3 क्लासेस के बाद इन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा, अपनी मां से कहा, सुनिए, मां से कहा कि मां जब हम मदरसे में जाते हैं जो हमारा सर जो पढ़ाता है, दीनी मदरसा था, जो पढ़ाता है ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमने कभी सुना है इसको, ऐसे फील होता है कि जैसे हमने कभी सुना है। ये माजरा क्या है, वो पढ़ाता है हमारे दिमाग में रिवीजन होता है, ये माजरा क्या है। सैयद रजी नहजुल बलागा के राइटर की मां कहती है, सैयद मुर्तजा जो अलम उल हुदा जिसको मौला ने कहा, ये दोनों भाइयों की मां कहती है कि बेटा जब तुम सैयद रजी से कहा, जब तुम मेरे शिकम में थे, 7 महीने का मेरी प्रेगनेंसी थी, दूसरे बेटे से भी कहा कि जब प्रेगनेंसी इतनी बढ़ गई थी तो मैं तुम्हारे बाप जब मदरसे में दीनी तालीम देता था तो मैं बैठकर क्लासेस में अटेंड करती थी, मां जो सुनती थी बच्चा सुनता था, समझे। मां जो मेरा, मैंने बड़ा जुमला कहा बॉम्बे में, मां जो सुनती थी वो बच्चा सुनता था। नाउ यू डिसाइड व्हाट आर यू लिसनिंग, हम क्या सुन रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, आप अच्छा समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। प्रेगनेंसी के बाद मां क्या सुन रही है, कानों में कौन सी आवाजें जा रही हैं, उसको अपनी रूह की गिजा मत बनाओ। उस चीज को रूह की गिजा मत बनाओ, ये मत समझो कि वो तुम्हारी रूह की गिजा है। وہ روح کی غذا نہیں ہے، روح کو خراب کرنے والی چیز ہے. اگر ماں وہ سنے جس کو اسلام نے منع کیا ہے. میں نے کیوں کہا کہ ہمارے گھر کا ماحول اینٹی اسلامک ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کا پرابلم ہے تربیت اولاد. اس لیے میں نے اس ٹاپک کو اس اشرے میں لیا کہ کرنٹ ایشوز میں اگر آج کل ہم آگے بڑھ کر اس طرح تعلیم نہیں دیں گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا، امام پوچھے گا اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں جب تجھے ملا تھا تو تُو نے میری ٹیچنگز کو کیا پیش کیا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خدا سب خراب ہے. میں نے پہلی مجلس میں آپ کو اگزامپل دیا، پڑوس میں آگ ہے تو تم یہ سوچ کے غفلت میں گھر میں مت سو جاؤ کہ آگ وہاں ہے ہمارے گھر میں نہیں، کل وہاں ہے تو ہمارے پاس بھی آ جائے گی. اگر کسی کے پاس ہے تو میں تو صرف ایک نئے میسج دینا چاہتا ہوں یوتھ کو کہ یہ مت سمجھو کسی کو دیکھ کے اگر وہاں پرابلم ہے تو ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ پرابلم تمہاری کین کم ٹو یو. تو جسٹ بی پریپیئر فار یور سیلف، پریپیئر ہو جاؤ اپنے لیے ٹو سالو دیٹ پرابلم. غذا، آواز، ماں کیا سنے؟ اگر ماں وہی سن رہی ہے جس کو اسلام کہہ رہا ہے تو دین اٹس فائن. اگر نہیں سنتی بچہ وہی سنے گا، اٹھنے کے بعد بچہ وہ کرے گا، وہ آواز کی طرف جائے گا، اس آواز کی طرف اٹریکٹ ہوگا، مجلسوں میں نہیں آئے گا. میں نے جیسے کہا کہ انسیڈنٹ ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو گیدرنگز نہیں پسند، گیدرنگز میں جائیں گے تو ہم کو وحشت ہوتی ہے. آپ سوچیں آج ہمارا یہ کہنا کہ میں بڑے بڑے گیدرنگز میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، آپ ہی کے شہر میں کہتے ہیں مولانا اتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں ورزوی میں تو ہم کو جانا بڑی وحشت ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی بڑی گیدرنگز میں جائے. بابا تم کو یہاں آنے کو وحشت ہو رہی ہے، روز محشر ٹریلین لوگ رہیں گے، جب کیا کرو گے؟ جب اللہ سے کہو گے وہ اتنی بڑی گیدرنگ بلین اور ٹریلین لوگ کھڑے ہوئے مجھے وحشت ہوتی ہے. جب فرشتے دامن پکڑ کے کھینچیں گے دنیا میں وحشت کرتا تھا حسین کی مجلس میں آنے. پلیز چیک کر لیں، چیک کر لیں. اگر غذا صحیح ہے، آواز کی آپ نے بات سن لی ابھی کہ ماں با... تیسری بات ہے کہ ماں بات کیا کرے بچے سے، انفینٹ بچے سے ماں بات کیا کرے، کیا بات کرے، وہ تو جواب نہیں دیتا. تو گھر میں کیس کیا آواز بتائے؟ بچہ سو رہا ہے، بچے کو رات میں ماں سلاتی ہے، کیسے سنائے، کیا بول کے سنائے، کوئی خوبصورت آواز سنا کے سنائے، بیوٹیفل آواز وہ سنا دے تو بچہ سوتا ہے. اب میں جانتا ہوں ایسے گھروں میں کہ وہ آواز چلتی ہے گھر میں، کہتے ہیں مولانا نیند نہیں آتی جب تک سنے نہیں، آئی کانٹ سلیپ. ہلکی ہلکی آواز، دھیمی دھیمی آواز جب آتی ہے نا تو نیند بڑی اچھی آتی. ویری گڈ یار، بہت اچھے. دھیمی دھیمی آواز کے اوپر نیند آ رہی ہے، کہتے ہیں مولانا نیند ہی نہیں آتی. اب میں بتاؤں تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، تین باتیں آج بتائی تربیت کے لیے کہ ماں بچے کو بات کیا کرے، سنائے کیا. یہ واقعہ مقدس اردبیلی کا ہے یا علامہ ہلی کے بیٹے کا ہے، کسی ایک عالم کا ہے، واقعے سے مطلب ہے. علامہ ہلی کا بچہ چار سال دس چار مہینے دس دن کا ہوا، فور ایئرس فور منتھس ٹین ڈیز. اسلام کہتا ہے کہ بچے کو پہلے بسم اللہ پڑھاؤ. یہ اپنے ایک عالم کے پاس لے کے گئے، خود نہیں پڑھا. آج کے تو دو سال کے بچے بولتے ہیں، بعض وقت تو ماں کے پیٹ میں بولنے لگتے. کمپیوٹر ایج ہے، 21st century ہے. فور منتھس فور ایئرس فور منتھس ٹین ڈیز میں بچے کو لے کے گئے. ماں بتائے کیا بچے کو، سنائے کیا. تیسری بات کہا کہ مولانا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائیے. بچہ آ کے بیٹھا گود میں مولانا کے، مولانا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے کہا بیٹا کہو بسم اللہ. اب مولانا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو تین چار پانچ چھ دفعہ بولوں گا تو وہ اپنی زبان میں آہستہ آہستہ بسم اللہ بولے گا، جو ایک روٹین ہے. جیسے ہی مولانا نے کہا کہ کہو بیٹا بسم اللہ، तो उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो ला रैबा फी हुदैलिल मुत्तखीना युमिनूना लजीना बिलगैब ये पूरा बकरा पढ़ने लगा। तो मौलाना ने रोक के कहा, बाबा तू बिस्मिल्लाह पढ़े, पूरा बकरा कैसे पढ़ रहा है? पलट के इनके बाप से कहा कि आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह सिखाओ, ये तो बकरा पढ़ रहा है। बाप ने कहा मुझे नहीं मालूम। बच्चे को गोद में उठाया, घर आए, घर आके मां से कहा ये तो मोजिजा हो गया, आज हमारा बच्चा मोजिजा कर दिया, हमने बच्चे को कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो सूर्य बकरा पढ़ रहा था। ये हुआ कैसे? तो मां ने उस वक्त पलट के कहा कि सुनो, जब मैं बच्चे को रात में सुलाती हूं तो सूर्य बकरा पढ़ के सुनाती हूं, तो मैं पढ़ती हूं तो बच्चे के जहन में पढ़ने लगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं बॉम्बे में कि प्लीज उन आवाजों को बंद करके, अब बच्चा हो गया ना, अब तो थोड़ी एहतियात कर लो। मैं क्या करूं, अब तो थोड़ी एहतियात कर लो, अब तो औलाद हो गई, अपना प्रोटेक्शन है इसका, अगर इसका प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो इस आयत का जवाब दोगे, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम अहलीकुम व अहलीकुम, अपनी औलाद अपनी औलाद अपनी औलाद को बचाओ उस नार से आग से। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, नहीं बचाओगे तो ये स्टेज पे पहुंचोगे। ये तीन चीजें आज बोलकर, जो करंट इश्यू का ये करंट इश्यू है ना हमारा, अब इसको ये तो कंटिन्यू चलेगा पूरा अशर तक कि औलाद की तबियत आहिस्ता आहिस्ता कैसे देना। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे पास पता है क्या है? इंटरनेट का, जिससे आप किसी पेरेंट से कहो, मां से कहो कि आप इस्लामिक तरीके से बोलते हैं कि नहीं, मैं इंटरनेट पर जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले लूंगी कि बच्चे को किस तरह पालना है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो वेस्ट की है, वेस्ट की इंफॉर्मेशन है। वेस्ट कभी भी नहीं लिखता कि बिल्कुल पाक और पाकीज़ा खाना खिलाओ, उनके पास तसव्वुर ही नहीं है। वो ये कि ये फीड करो, ऐसा करो ऐसा करो। मैं इंटरनेट के खिलाफ नहीं हूं, कोई गलत नहीं समझे, वैसे आपको एक तालीम ही नहीं देता, वो अपनी तरीके से बता रहे हैं, इस्लाम जो बता रहा है उसके खिलाफ बता रहे हैं। ठीक है लो आप, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने मजहब को छोड़ के टीचिंग सब मासूमीन को छोड़ के उनके ऊपर पूरा भरोसा करें। मासूमीन के टीचिंग पर भरोसा नहीं है, इंटरनेट पर भरोसा है। इससे ज्यादा जो दूसरी चीज है बच्चों के साथ, इसी इंटरनेट से आगे बढ़े फेसबुक पे पहुंचे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा है ना फेसबुक का है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। मैं कल की बात से अपने आप को रिलेट कर रहा हूं, कल जहां मैंने छोड़ी थी मजलिस वहां से रिलेट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आज जो प्रॉब्लम है फेसबुक का है। प्लीज मैं यूथ से बात कर रहा हूं, यूथ, लड़कियों से और लड़कों से, सिर्फ बुजुर्गों से बात नहीं कर रहा, इसलिए कि अगर ये सही हो जाए, इनके जहन में बात आ जाए, तो फिर वो इस्लाम वैसा होगा जैसा खुदा और मासूम चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो मसला है वो फेसबुक का है। आपने सोचा कभी, देखा, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, कि क्या चीज कर रहे हैं फेसबुक, क्या चीज है? यहां बॉम्बे में हमने अकाउंट खोला, अमेरिका में पूरा अमेरिका हमें देख रहा है। हिजाब पाक और पाकीज़ा खातून जिसको किसी ने कभी देखा नहीं, हमने उस फोटोज को लोड किया, लोड करना था पूरी दुनिया ने देख लिया। ये क्या है? प्लीज चेक करो अपने आप को, ये अजीब गुनाह तुम कर रहे हो कि जिसकी वजह से, जिस फेसबुक की वजह से, मैं फेसबुक के खिलाफ अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, मैं फेसबुक के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप किधर जा रहे हैं, वेस्ट आपको कहां लेके जा रहा है। वो औरतें, वो खातून, वो हमारी मां बहनें, उनके फोटोज को लोड करके दुनिया को बताना, आपने सोचा कि आपकी एक इस गलती से पूरी दुनिया ने इसको चेहरा देखा, गुनाहगार कौन बना? किसके अकाउंट में गुनाह आया, किसके अकाउंट में माइनस हुआ? घर में प्रॉब्लम नहीं होंगे तो क्या होगा? चेक कर ले फेसबुक को कि क्या हशद है आज। बगैर फेसबुक के जिंदगी नहीं गुजरती, सबको लोड कर दिया। कहते नहीं मौलाना, जो हमारे अकाउंट होल्डर है, जो हमारी फ्रेंड लिस्ट है, वही चेक करेंगे, वही देख सकते। बाबा वही देख सकते। मिसाल के तौर पे एक लड़की आपकी फ्रेंड लिस्ट में से लड़की देख रही है, उसका भाई आकर देख ले तो वो बहन बोलेगी भाई तुम ये क्या देख रहे हो। उसके कोई दूसरे या कजिन आके देख ले, आपको देख रहे नहीं, ये क्या है? फिर हिजाब कहां है? अगर ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा तो औलाद तबाह हो जाएगी। गुनाह कबीरा है। करंट इश्यूज का सबसे ज्यादा मेन इश्यू ये फेसबुक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अगेंस्ट नहीं हूं, 21st सेंचुरी में लाजिम है, बट डजंट मीन आप वो चीज लोड करो जो एंटी इस्लाम नहीं है। वो चीज बताओ कि जिससे आपको आपका इमाम आपका मासूम आपसे नाराज ना हो। लेकिन हम नमाज रोजा हज हर चीज हमारे पास है, फिर सुबह से शाम तक गुनाह कबीरा भी है, तो फिर ये नमाज का क्या फायदा, ये ज्यारतों का क्या फायदा? ये पूरे खानदान को तुम लोगों को बता रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है। अगर तुम प्रोटेक्ट आज नहीं करोगे, इफ यू डोंट प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, जवाब कौन देगा? हु इज गोइंग टू आंसर? आपको मालूम कितने लोगों ने देखा? आपकी मां को, आपकी वाइफ को कितने लोगों ने देखा? यू डोंट नो। लाखों, उन सब का गुनाह आपके अकाउंट में आएगा। किस हालत में हर चीज को लोड करो? बाबा इससे बेहतर सिंग्स ऑफ मासूमीन लोड करो, टीचिंग्स ऑफ मासूमीन लोड करो। स्पेयर सम टाइम, स्पेयर 15 मिनट्स टीचिंग्स फ्रॉम मासूमीन के। नहजुल बलागा के लो, सैफे कामिला के लो, कुरान लो, इंग्लिश में हर चीज है। डेली एक एक सेइंग ऑफ मासूमीन लोड करो अपने फेसबुक के ऊपर। लेट देम सी, लेट देम सी, लेट देम रीड, तो कभी तो असर होगा। इसमें फायदा यह है कि आपने एक टीचिंग को लोड किया, 1 लाख आदमी ने उसे पढ़ा, 100,000 ने पढ़ा, पढ़ने के बाद 100,000 में सिर्फ एक ने अपने चेंज हुआ, एक को असर हुआ, एक ने अमल किया, 99,000 ने नहीं किया, वो एक की वजह से आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, एक की वजह से। डू दिस। करंट इश्यूज का मेन इश्यू है, आशियत कहां जा रही है, वेयर आर वी गोइंग? हम सोच रहे नहीं। सबसे पहले मैं यही तो कहता हूं कि रिमोट को अपने हाथ में रखो यार, रिमोट जो है ना अपने हाथ में रखो। एक वाकया सुनाता हूं, यह वाकया कल तक चलेगा, कि अगर यह गुनाह हुआ तो एक चीज मेरी याद रख लें। हजारों आदमी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह रिजवी साहब को सलामत रखे जिन्होंने ये मजलिसों को अरेंज किया। आपको पता है कि दुनिया बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। यू डोंट नो कब हमारी ये आंख बंद हो जाए, कब हम दुनिया से चले जाए। हमको जमीन पे चलने की आदत है, ऊपर बॉम्बे में हम रोड पे चलते हैं। कभी रात में सोचो ऊपर, अब चलना सिर्फ 60-70 साल है, 70-80 ईयर्स। कभी ये भी सोचो 6 फीट 8 फीट अंडरग्राउंड भी होने वाले हो, 8 फीट 6 फीट अंदर होने वाले अंडरग्राउंड। सब होंगे, सब होंगे, सब होंगे, सब होंगे। उस वक्त कोई भी ना फेसबुक ना ये ना वो आके मदद करेंगे। वहां पे आदत हो गई रोड पे चलने की, बड़ी गाड़ी में बैठने की, वहां कुछ नहीं है, अंडरग्राउंड हो जाओगे। उस अंडरग्राउंड होने के लिए, उसके लिए ये करंट इश्यूज मैंने टॉपिक लिया सिर्फ इसलिए, अगर औलाद को सही नहीं बताओगे, اولاد کو اسلام نہیں بتاؤ گے، اولاد کو ویسٹ کے حوالے کر دو گے، تو جب تم انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ گے تو نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی. وہ لوگ آپ کو وہاں دفن کر کے تھینک یو کہیں گے، تھینک یو، اور واپس چلے جائیں گے. یو ول بی آل الون، یو ول بی آل الون، اندر بالکل اکیلے ہوگے. اس لمحے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو، اس جگہ سے ڈرو کہ جہاں پر تم ہوگے اور وہ اندھیرا ہوگا، تم ہوگے وہ تاریکی ہوگی، تم ہوگے وہ وحشت ہوگی. آپ کہیں گے وحشت کہے گی، اگر وحشت نہیں ہوتی، فیئر نہیں ہوتا، تو دو رکعت نماز پہلی رات کی وحشت کی نیت سے نہیں پڑھوائی جاتی. پڑھوانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اتنی وحشت ہے، اتنا فیئر ہے، اتنا فیئر ہے کہ امیجن نہیں کر سکتے. مولا علی کے اس جملے کو یاد کرو، علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ اس وقت سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے انسیکٹ تمہاری ناک سے انٹر ہو کے آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. عابد بکرامی کا جملہ نہیں ہے یہ، اس علی کا جملہ ہے جو صدیق اکبر ہے. اس علی نے کہا پلیز پروٹیکٹ یور چلڈرن، پروٹیکٹ یور چلڈرن. یہ ٹاپک اتنی واسٹ ہے کہ چلتی رہے گی. ایک واقعہ سناتا ہوں بس. 22 یا 23 ایئرس کی ایک عورت خاتون تھی. اس واقعے کو مرزا حسین نوری، شیخ عباس خمی، دو یہ بڑے رائٹرز علماء ہمارے ان واقعے کو لکھا. 22 ایئرز اولڈ گرل، لیڈی، گرل بھی کہیں اسے، میرڈ گرل، انتقال ہوتا ہے، ہسبینڈ، بھائی، ماں باپ بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے. اس کو دفن کر دیا. دفن کر کے ہسبینڈ واپس آیا گھر. اب کسی کی جوان بیوی مر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ بے انتہار ہوگا. پہلی رات سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک آگ کے شولے ہیں. میں نے رائٹر کا نام لیا، شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنہ کا رائٹر، مرزا حسین نوری، انہوں نے اس واقعے کو لکھا. کوئی معمولی پرسنالٹیز نہیں ہے، یہ اپنے دور کے آغائے خوئی اور آغائے خمینی سے بڑے، آغائے شیستانی سے بڑے، بڑا پائس، بڑا پائس، سو سال برا نہیں بات. انہوں نے اس واقعے کو لکھا. 22 ایئرز اولڈ لیڈی، گرل، میرڈ گرل، ایک بچہ اس کو، اس نے، اس کی ڈیتھ ہوئی، غسل و کفن کے بعد لٹا دیا. خواب میں ہسبینڈ دیکھتا ہے پہلی رات کو کہ خبر آگ سے بھری ہوئی ہے، شولے ہیں. یہ بیدار ہو گیا وحشت میں، رونے لگا. اب سوتا ہی نہیں ہے، آدھی رات کو دیکھتا ہے سوتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے یہ میں نے کیا دیکھا، اب میں نے کیا دیکھا. دوسرے دن انتظار کرتا ہے، خواب نہیں آتا. ایک پہلے دن دیکھا. اب یہ تڑپ کے دعا کرتا ہے کہ مولا میری وائف پہ رحم کرو، مولا میری وائف کو میرے خواب میں بھیجو کہ ایٹ لیسٹ لیٹ می آسک کہ اس نے کیا کیا، 22 سال کی ایج میں کیا کیا کہ جس سے اس کو یہ پرابلم آ گیا. پلیز 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 کہہ رہا ہوں میں، غور سے سنیں. اتنے بڑے رائٹر نے اس واقعے کو لکھا، میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. کہا کہ کیا ہوا؟ مسلسل مسلسل دعا کرتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، عمل کرتا رہا کہ مولا پلیز اس کو خواب میں بھیجنا، ایٹ لیسٹ لیٹ می نو کہ ہوا کیا، کیوں یہ عذاب آ رہا. نیک تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، سب کرتی تھی، حجاب کرتی تھی، پھر یہ پرابلم کیوں ہے؟ 3 مہینے کے بعد خواب میں آتی ہے وہ. جب خواب میں آئی تو ہسبینڈ نے پہلا سوال کیا کہ بیٹ تو نے کیا کیا، اتنا عذاب، سخت عذاب. اس نے 5 یا بعض روایتوں میں 7 ہے، بعض روایتوں میں 5 باتیں بتائی. سب سے پہلے اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں इसने पूछा, इसने ये कहा, तू नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, जाहिरी तौर पे दीनदार थी, तू हिजाब भी करती थी। तो इसने कहा, मैं हिजाब तेरे सामने करती थी, जब घर से बाहर जाती दोस्तों के साथ तो हिजाब उतार देती थी। एंड दिस इज वेरी कॉमन। कहती कि मैं नामहरमों के सामने बड़े आराम के साथ जाती थी। किसको धोखा दे रहे, किसको धोखा दे रहे, क्या नतीजा हुआ? दूसरी चीज उसने कही, मैं कल मैंने हिजाब पे आई थिंक मैंने बोल दिया, काफी प्रेशर में आगे नहीं किया, प्रेशर में आगे कर रही है, नॉट फ्रॉम द हार्ट, जिसकी वजह यह हुई कि बाहर निकली, निकाल दिया। यह नहीं सोचा कि मैं जो हिजाब कर रही थी वो घर से निकली शौहर के खौफ में, हस्बैंड के डर से, मुझे अल्लाह का डर नहीं है, मुझे अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं है, निकाल दो। एग्जैक्टली सेम चीज हम कर रहे हैं, हर वो काम जो हम करते हैं किसी के डर से करना या अल्लाह के डर से करना। एक चीज हमेशा याद रखें, हमेशा जो काम करो उसके लिए करो, बस। दूसरी चीज वो कहती है कि मैं हिजाब का ही मेरा प्रॉब्लम था, और दूसरी चीज मैंने बैक बाइटिंग बहुत की, फसाद, फितना। कल मेरी पहली मजलिस में मैंने कहा था कि फितना पैदा हो जाएगा आखिरी जमाने, फितना लगा दिया। ये इतना कॉमन हो गया हमारी सोसाइटी का, इतना कॉमन इश्यू है कि हम इसको समझते ही नहीं कि ये बैक बाइटिंग है। आप देखें कि क्या चीज है ये, क्या चीज है, सगे भाई का गोश्त खाने के बराबर है, रियल ब्रदर का फ्लैश खाने के बराबर है। आप किसी से पूछो क्या तुम बैक बाइटिंग करते हो, कहते नो 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 नो, हम तो नहीं करते बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग का मतलब क्या है, क्या चीज है ये बैक बाइटिंग? किसी चीज, किसी के बारे में बात करना, किसी के बारे में बात करना, हमको कोई राइट नहीं है कि मैं किसी के बारे में बात करूं पीछे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगर हम इसको स्टॉप नहीं करते, हम अपनी ड्राइंग रूम टॉक, अपनी डाइनिंग टेबल टॉक, हम अपनी मीटिंग्स, ये सब में सिवाय इसके कुछ नहीं बात करते। वो कहती है कि मैंने इतने बातें की अपने खानदान के, एज क्या है 22 ईयर्स, वाजिबात कब शुरू हुए 9 ईयर्स के बाद, तो 11 ईयर्स में उसने इतना किया। अगर हमारी एज 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो जस्ट इमेजिन 15 ईयर्स से अगर कोई 70 ईयर्स, तो 55 ईयर्स तक जो हमने किया है, वी हैव टू आंसर। अभी भी हम अपने आप को चेक नहीं कर रहे, करंट इश्यू में ये मेन इश्यू नहीं है, क्यों स्ट्रेस किया गया, वाई अल्लाह का रसूल ने स्ट्रेस किया। रसूल ये कह रहा है, अल्लाह का रसूल ये कह रहा है कि तुम ये बैक बाइटिंग के बदले में, तुम जब एक मोमिन, लोग कहते हैं मौलाना फिर हम करेंगे एक दूसरे के लिए, अगर बात नहीं करें, दूसरों की बात नहीं करें, तो फिर हमारे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, ये टॉपिक, सिर्फ ये टॉपिक रह गई दूसरों की बात करना। प्लीज, मैं यूथ से बात कर रहा हूं, बड़ों से नहीं। अभी से आदत मत बनाओ बैक बाइटिंग करने की, अभी से वो हैबिट मत बनाओ लोगों के बारे में बात करने की। तुम घर में रिवोल्यूशन लाओ, तुम घर में इनकलाब लाओ, तुम घर में रिवोल्ट करो, बच्चे रिवोल्ट करें, लड़कियां रिवोल्ट करें, जब डाइनिंग टेबल पे अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ जब बैठ के खाना खाते हो, 6-7 आदमी की फैमिली है, सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, सब बैठे हुए, मेरी लड़कियों से और लड़कों से बात कर रहा हूं, जब बैठ के खाना खाओ, अगर कोई शख्स तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे किसी और की बात करे, किसी की बैक बाइटिंग करे, तो तुम रिवोल्ट करो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, कहो कि हम अपने खाने को हराम नहीं करते। जब बच्चे बोलेंगे तो माहौल खुद ब खुद इस्लामिक होगा, एंटी इस्लामिक हटेगा। जब आप बोलने लगेंगे तो फिर किसी पेरेंट्स को जरूरत नहीं होगी, इसलिए बेटा तो टोक रहा है, बेटी टोक रही है। तो प्लीज, जब अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने डाइनिंग टेबल्स पे वो बात करो जिससे तुम्हारा अल्लाह राजी हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब एक दूसरे से मिलो तो जिक्र अली करो, मौला अली का जिक्र करो।
گھر میں. تو آپ ایمان سے بتائیے کہ ہر گھر کا ماحول کیا ہوگا. پھر کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کی بات کرے. تو پھر آپ کا ماحول, آپ کا گھر وہ ہوگا جو مولا علی چاہتے ہیں. ادروائز یو آر گوئنگ ٹو فیس دس پرابلم. دیکھیے ایک چیز یاد رکھے, وہاں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. آرام باغ جائیے, کسی بھی گریو یارڈ کو جائیے, باہر سے کچھ نہیں معلوم ہوتا, سب آرام سے, لیکن اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ یو ڈونٹ نو. اگر یہ چیزوں پہ چیک نہیں کرتے تو ہمارے ایشوز کتنے بڑھتے جائیں گے. جب کبھی کوئی واقعہ, کوئی انسیڈنٹ سنو نا, تو فوراً چیک کرو کہیں یار یہ میرا تو نہیں ہے, کہیں میں تو اس پرابلم میں, اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. اگر یہ انسان چیک کرنے لگے نا, بلیو می, ہر گھر کا ماحول صحیح ہوگا. کیوں بات کریں, وائی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ادرز, وائی 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 کیوں بات کریں؟ وہ بات کرو کہ جو اس کو اچھی لگتی ہے. کسی کے بارے میں ہم کیوں کریں؟ وائی؟ پہلے بامبے میں ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, اس کے بعد ہم دوسروں کی بات کریں. ماحول ہمارا اتنا خراب ہو گیا, یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز آ گئے کہ یہ اب بیماری, یہ تکلیف, یہ عذاب ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ہر انسان اپنی دوسروں کی بات کر کے اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے. معصوم کا جملہ ہے, عابد بلرامی کا جملہ نہیں, معصوم کا جملہ ہے. جتنی تم بیک بائٹنگ کرو گے, مثال کے طور پہ میں اگزامپل اپنی دے رہا ہوں, میں میری اگر خدا نہ خاصم, میری تو نہیں کرتے بہرحال کسی کی بھی, اگر آپ بیک بائٹنگ کریں گے تو جب ایک اسٹیج ایسا آئے گا جب تم پہنچو گے مرنے کے بعد محشر میں, اور وہ بھی پہنچے گا, تمہارا اعمال نامہ بالکل خالی رہے گا, سلیٹ بالکل صاف رہے گی. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پکار کے کہے گا کہ پروردگارہ میں نے 40 سال نمازیں پڑھی, میں نے اتنی نیکی کی, اتنی نیکی کی, میرے اعمال نامہ تو بالکل صاف ہے. تو آواز آئے گی, تو 40 سال غیبت بھی تو کرتا تھا, تو پورے تمہارے اعمال ادھر چلے گئے, پوری نیکیاں ادھر چلی گئی, آپ بالکل empty hands. And who is going to help you over there? وہاں کون مدد کرنے والا ہے؟ If you have empty hands, خالی ہاتھ ہو جاؤ گے. یہ گارنٹی نہیں کہ 22 سال, 20 سال, 21 سال کی عمر ابھی. No. Everybody should check اپنے گھر کے ماحول کو, اس ایشوز کو. آج اگر ایک ایشو کسی ایک لڑکی نے بھی, کسی ایک لڑکے نے بھی یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی کسی سے بات نہیں کریں گے, تو دوستو یقین کرو 3 محرم کی مجلس کا حق ادا ہو گیا. ایک نے بھی کر لیا. میری خواہش ہے آپ سے, میں بیک کر رہا ہوں آپ سے, بیک کر رہا ہوں آپ سے, اسٹاپ دس ہیبٹ, اسٹاپ دس ہیبٹ. It's high time now, high time. کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر کام کی بات کرو, نالج کی بات کرو, علم کی بات کرو. Then you see کہ you will get something. اس سے فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اعمال خراب کر رہے ہیں. یہاں تک آپ ایمان سے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ حالت ہو گئی کہ سگا بھائی, ریئل بردر, اون بردر, وہ اپنے بھائی کی بات کر رہا ہے. یار افسوس, یہ ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا عذاب آ گیا میرے اوپر, عذاب آ گیا. پلیز اپنے آپ کو ایسا پروٹیکٹ کر لو, ایسا پروٹیکٹ کرو کہ آج کے بعد ہم کبھی وہ کام نہیں کریں جس سے ہمارا امام ناراض ہو جائے. صلوات پڑھ لے محمد. سمجھے میں کیا کروں, وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا, 55 منٹس ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ٹاپک تو ابھی چلے گی, میں بات کو یہیں روکتا ہوں. روک کر میں نے کافی لوڈ دیا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک فائدہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہٹنے کے لیے زمانے کے امام کا ایک عمل کر لیں. Then you will get close to your imam, inshallah, inshallah. ایک عمل کریں. محرم ہے, اشرے محرم ہے, پہلا اشرا ہے, تو اس میں امام کا ایک عمل کرو.
मैंने इससे पहले बताया था लेकिन आज इतना बड़ा मजमा इसलिए बता दे रहा हूं। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि यहां बताइए, यहां बताने से लोगों को फायदा होगा। प्रॉब्लम्स जो है, तकलीफें, परेशानियां हैं ना, ये अमल ऐसा है कि यही वो अमल है कि टैक्सेस ह्यूस्टन में जब मैंने बताया था आज से 5 या 6 साल पहले, एक खोजा फैमिली थी, सज्जनलाल फैमिली, उनके बेटे को ट्यूमर हो गया था यहां पे। आज भी वो लोग हैं वहां पे, यू कैन चेक विद हिम। टैक्सेस ह्यूस्टन में इमाम बारगाह गदीर, अल गदीर जो इमाम बारगाह है, वहां बताया था, वहीं पे वो लोग आते हैं ह्यूस्टन में। ट्यूमर हो गया था, ट्यूमर, यंग बॉय, 24-25 ईयर्स का। मैंने ये अमल बताया था उनके पेरेंट्स को। सज्जनलाल फैमिली है, कराची की फैमिली है, तो पेरेंट्स बड़े परेशान थे, बेनतिया परेशान थे। जवान बच्चा, 20, 23, 24 साल का बच्चा, उसको ट्यूमर हो जाए, पेरेंट्स आर वरीड, पूरी फैमिली वरीड थी, सिस्टर्स वरीड थे, खानदान वाले परेशान थे कि आखिर ये क्या हो गया, बच्चा कैसा बचेगा। लेकिन एक चीज है, जब सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते, वो सबसे बड़ा दरवाजा, वो सबसे बड़ी ताकत है। बिलीव मी, मैंने नाम दिया, रेफरेंस दिया, गदीर इमाम बारगाह कहा, हो सकता है ये मजलिस लोग सुन रहे होंगे वहां पे, तो उनको ये अमल बता, पेरेंट्स ने अमल किया, बिलीव मी, ये वो अमल है दोस्तों, 10-15 मिनट का अमल है, लेकिन ये सोने की कान है, गोल्ड की माइन है। इफ यू डू इट फ्रॉम योर हार्ट, इफ यू डू इट फ्रॉम योर हार्ट, देन यू विल गेट द आंसर इन आवर्स, इन आवर्स। लेकिन अगर जमान की नोक से कर रहे, फायदा नहीं है। 3 दिन करो, 5 दिन करो, रोते हुए करो, गिरिया करते हुए करो, बट डोंट डू इट इन दिस फर्स्ट 12 डेज, ये मुसीबत के दिन है। 12 दिन के बाद कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा, तो जमाने के इमाम को मजलूम है करबला का वास्ता देकर घर से बाहर निकलो, जेर समा करो, 15 मरतबा सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु, 186 टाइम्स या हुज्जतुल खायम पढ़ो, फिर 15 सलवात, 10-12 मिनट जाएंगे। लेकिन बिलीव मी, ये वो अमल है कि आज उनके पेरेंट्स ने किया। वो बच्चे की फाइल जब फाइनल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गई, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि शायद फाइल बदल गई या पेशेंट बदल गया, हो सकता पेशेंट बदल गया हो। इनके पेरेंट्स ने कहा पेशेंट नहीं बदला, डॉक्टर बदला। दुनिया के डॉक्टर को हमने नहीं बताया, बड़े डॉक्टर ने चेंज कर दिया। यकीन नहीं आया बंदों को कि ये वही पेशेंट है। आज वो लड़का माशाल्लाह जॉब कर रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन पेरेंट्स ने यहां से किया था, फ्रॉम दिल से। जब दिल से करोगे तो बिलीव मी, कोई 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 विश है आपकी, एनी विश, वो करके देखो। ये अमल जमाने के इमाम का, कि हाउ इमाम इज गोइंग टू आंसर यू। इसलिए कि दुआ ये करो कि मौला हमारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करो, और हमको सीधे रास्ते पे भी लाओ, हमको बैकबाइटिंग से बचाओ, हमको हिजाब करने की तौफीक दे। ये जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी इमाम की रहमत, ब्लेसिंग आपको कैसे मिलेगी। इसलिए कि दोस्तों ये जो 12 डेज है ना, जो मजलिस है ना, ये करम है इमाम हुसैन का। आपको अंदाजा नहीं है कि इतना बड़ा मजमे पे इमाम हुसैन का करम कितना हो रहा। आप बैठे हुए हैं कि आप क्या समझ रहे हैं, हम ही बैठे हुए ये जिक्र हुसैन सुनने, फरिश्ते भी हैं, मलाइका तमाम लोग हैं हमारे आंखों के सामने पर्दे। और जब ये यकीन है, ये हमारा बिलीव है कि हर मजलिस हुसैन में हुसैन की माँ आती है, फातिमा आती है, तो जब शहजादी आती है तो क्या खाली हाथ चली जाएंगी? बीबी खाली हाथ नहीं जाती, बीबी कुछ दे के जाती, लेकिन लेने का तरीका चाहिए। बीबी दुआ दे के जाती है कि मेरे बच्चे पे रोने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। शबे चार मुहर्रम है आज, 3 दिन गुजर गए मुहर्रम के, अब सिर्फ 7 दिन रह गए, फिर वो मुसीबत का दिन आएगा जिस दिन फातिमा का घर उजड़ जाएगा। ऐसा उजड़ा आशूरे के दिन कि फिर कयामत तक हुसैन का घर आबाद नहीं हुआ, छोटे छोटे बच्चे जिबा हो गए। दिन गुजरते जा रहे हैं, तेजी से गुजर रहे हैं, कितनी रौनक है रिजवी कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलसल जिक्र हुसैन है, और आज उस शहीद का जिक्र है कि जिसके ऊपर हुसैन को इतना ट्रस्ट था, भरोसा था, ये हुसैन का सफीर है, हुसैन का एनवॉय है, जिसका नाम मुस्लिम इब्ने अखील है। अल्लाह हम सबको कूफे की ज्यारत नसीब हो। कूफे में जिन जिन लोगों ने ज्यारत की है वो मस्जिद कूफा में मुस्लिम इब्ने अखील को जरूर सलाम करते। ये वो मजलूम शहीद है, इसकी शहादत से करबला का आगाज हो गया। कूफे वालों ने खत लिखा कि मौला आप आइए, मौला आप आइए, मक्के में हुसैन है। एक स्टेज ऐसा आया कि उन लोगों ने लिखा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम रोजे कयामत आपके नाना से फरियाद करेंगे। तो हुसैन ने मुस्लिम इब्न अखील को बुलाया, बुला के कहा कि भैया तुम जाओ, मेरी नियाबत में जाओ और जाकर खत लिखा उन लोगों के नाम पे, आप देखेंगे हुसैन को मुस्लिम पे कितना भरोसा था। हुसैन ने जो खत लिखा उसके वर्डिंग्स ये थे कि मैं अपने भाई मुस्लिम को अपना सफीर बनाकर, अपना एनवॉय बनाकर भेज रहा हूं, इसके हाथ पे बैत करना ऐसा है जैसे तुमने मेरे हाथ पे बैत की। कितना भरोसा है इमाम को, कहा इसके हाथ पे बैत करना ऐसा जैसे तुमने मेरे हाथ पे बैत की। मुस्लिम जब चल रहे थे, चलते चलते मुस्लिम ने इमाम हुसैन से कहा, मौला क्या मैं अपने बच्चों को भी साथ ले लूं? दो छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम था। जनाब मुस्लिम इब्ने अखील की जो बीवी हैं वो जनाब अब्बास की सगी बहन है, ये ब्रदर इन लॉ भी है इमाम हुसैन के, सगी बहन आपकी अख्त में थी। ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लिया, आपने करबला की ज्यारत की तो मुसैयब की भी ज्यारत की होगी। मुसैयब में आज भी ये दोनों शहजादों के छोटे छोटे खबरें बनी हुई हैं। अल्लाह हमको फिर ज्यारत नसीब करे इंशाअल्लाह। अजीजों जब मुस्लिम बच्चों को लेके कूफा पहुंचे तो हजारों की तादाद में आके मुस्लिम के हाथ में लोगों ने बैत की, लेकिन बैत की ये कूफी ला यूफी थे, इन पे भरोसा कोई नहीं कर सकता था, इसलिए कि इन्होंने मौला को भी शहीद किया, इमाम हसन को भी इन्होंने शहीद किया। लेकिन दिन गुजरे, इब्ने ज़ियाद जब हाकिम बन गया आके तो उसने जुल्म शुरू किया। ये कूफियों ने ऐसा साथ छोड़ा मुस्लिम का कि रिवायत में है कि मुस्लिम ने मगरिब की नमाज जब पढ़ाई तो मस्जिद में लोग थे, जब ईशा की नमाज पढ़ के पलटे तो कोई नहीं था। रात का वक्त है, मुस्लिम जाए तो कहां जाए, अकेला मुस्लिम कूफे की गलियों में घूम रहे हैं। एक घर के सामने जाके खड़े हो गए। उस घर की जो औरत थी मालिक, वो बाहर निकली अपने बच्चों को ढूंढने, लेकिन जब बाहर निकली तो देखा कि एक नूरानी शख्स का इंसान खड़ा हुआ है। उसने कहा कि ऐ शख्स तू अपने घर क्यों नहीं चले जाता? तो मुस्लिम ने सर को झुका के कहा कि कहां जाऊं, मेरा कोई घर नहीं है। तो उस वक्त उसने कहा कि तुम चेहरे से तो बड़े नूरानी मालूम होते हो, कहां के रहने वाले हो? तो कहा मैं मदीने का रहने वाला हूं। बस मदीने का नाम सुना उसको बीबी जैनब याद आ गई, उसको हुसैन याद आ गए। पूछा मदीने में कहां रहते हो? तो कहा मैं मदीने में महले बनी हाशिम में रहता हूं। महले बनी हाशिम सुना तो कहा कि कौन, नाम क्या है तुम्हारा? वहां तो मेरा आखा हुसैन रहता है, वहां तो मेरी आखाजादी जैनब रहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो मुस्लिम ने कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अखील है। बस ये सुनना था, वो बीबी खदमों में गिर गई, कहा आखा बाहर ठहरे हुए, अपने घर में आई, घर में लेकर आई, खाना खिलाया, अखील का बेटा है, मुसल्ले को बिछा के बैठ गया। रात में जब नमाज शब को उठा, इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम फुला मकाम पे ठहरे हुए हैं, उसने 3,000 से 5,000 का लश्कर भेजा। जब घोड़ों की, टापों की आवाज मुस्लिम के कानों में आई, अजीजों मुस्लिम मुसल्ले पे थे, मुसल्ले से उठे तलवार को टेक कर, जब बाहर जाने लगे तो इस औरत, इस मोमिना ने रोक के कहा कि आका पांच इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, आप घर में रहिए, आप बाहर न जाइए। मुस्लिम ने अजीब जवाब दिया, मुस्लिम ने कहा कि मैं घर में नहीं नहीं रहना चाहता, इसलिए कि उनको पता चल गया कि मैं तेरे घर में हूं। अगर वो लोग घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो तेरा पर्दा चला जाएगा, तेरी चादर का कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा। मैं कहूं जनाबे मुस्लिम से कि आका एक कनीज के पर्दे का ख्याल है, अरे जरा शामे गरीबा ज़ैनब के पर्दे का देखो। इसी तरह पुरसाद है। मुस्लिम से कहो मौला आपको अपने कनीजों के पर्दे का, अरे ज़ैनब के सर पे चादर नहीं गई, उम्मे कुलसूम के सर से चादर छीनी गई। मुस्लिम बाहर आए और जब बाहर आए तो जंग की अखील का बेटा है, अबू तालिब का पोता है, खूब जंग की, बड़े बहादुर थे, इतनी जंग की कि मुस्लिम को आखिर में उन लोगों ने धोखे से पकड़ लिया, और जब धोखे से पकड़ा तो हाथों में जंजीरें डाल दी। डाल के मुस्लिम को जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो मुस्लिम का आलम यह था कि सर को उठाकर इब्ने ज़ियाद से बात कर रहे थे। अजीजों यहां पर एक शख्स बैठा हुआ था, उसने वाकई करबला के एक जमाने के बाद मदीना आया। मदीना आकर उसने चौथे इमाम से दो सवाल किए और यह कहा कि मौला मैं उस वक्त कूफे में था जब आपके चचा मुस्लिम को पकड़ के लाया गया, तो जब वो दरबार में आए तो इब्ने ज़ियाद से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, उनका सीना तना हुआ था, लेकिन मौला मैं उस वक्त भी दरबार में था जब आप दरबार में आए, लेकिन आपका आलम यह था कि आपका सर झुका हुआ था, आप नीचे देख के बात कर रहे थे। मौला आप तो इमाम हैं, आप तो बहादुर हैं, ये कहना था। चौथे इमाम रोने लगे, रोते हुए कहा भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे जब मेरा चचा आया तो वो अकेला था, जब मैं दरबार में आया मेरे साथ मेरी बुबी ज़ैनब थी, मेरी माँ बहने थी, मैं सर को न कैसे नहीं झुकाता। इसी तरह पुरसाद अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। हुसैन के सफीर का मातम है। इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगु हुई मुस्लिम की, उसके बाद इब्ने ज़ियाद ज़ालिम ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को दारुल अमारा की बुलंदी पे लेके जाओ और लेके जाकर सर को खलम कर दो। जल्लाद मुस्लिम को लेकर दारुल अमारा की बुलंदी पर लेकर गया। अजीजों मुस्लिम ने कहा मैं दो रकत नमाज पढ़ लूं। नमाज पढ़ के हम जो हर मजलिस के बाद, हर नमाज के बाद ज़ियारत करते हैं ना, जो ज़ियारत पढ़ते हैं, ये मुस्लिम इब्ने अखील की सीरत है, ये मुस्लिम इब्ने अखील का अमल है। नमाज के बाद उन्होंने कहा अरे मेरा आखा मक्के में है, उसको नहीं मालूम कूफे में ये जुल्म हो गया। खड़े रहकर कहा अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेका या अब्ना रसूल अल्लाह। अजीजो हुसैन एक जगह ठहरे हुए थे, हुसैन ने अलैका सलाम कहकर जवाब दिया और उसके बाद कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुमले ज़ैनब के कानों तक पहुंचे, बीवी ने कहा भैया ये जुमले क्यों कह रहे हो, तो ज़ैनब को हुसैन ने करीब बुलाया, कूफे की जमीन की तरफ इशारा किया, तो बहन ने दूर से मंजर देखा कि मुस्लिम के गले पे खंजर चल रहा है। ज़ैनब फरियाद करने लगी मैं कहूं बीवी आज इतनी दूर से देख लो, कल करबला में गले ज़ैनबिया तक आओगी, तुम्हारे सामने हुसैन के गले में खंजर चलेगा। इसी तरह पुरसाद है। बस मैंने मस्जिद को तमाम किया। बस आखिरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। बस आखिरी बात, मस्जिद तमाम हो गई, पुरसा हो गया, अभी ज़ैनब वहीं बैठी नहीं है। हुसैन ने ज़ैनब से कहा कि बहन रुखैया को लेकर आओ। रुखैया जो जनाबे मुस्लिम की यतीम बच्ची थी, 4 या 5 साल का सिन था, कहा बहन रुखैया को लेकर आओ। अजीजों ज़ैनब ने जाके रुखैया को लेकर आई, हुसैन बैठे हुए, बच्ची जब आई 4 साल की तो हुसैन ने उसको अपने जानू पे बिठाया, सर पे हाथ फेरने लगे, कानों में गोशवारे पहनाए, बोसा दिया। अहले बैत की घर की बच्ची थी, समझ गई, कहने लगी चाचा ऐसा सुलूक कर रहे जैसे किसी यतीम के साथ किया जाता है। तो हुसैन ने कहा रुखैया तुम्हारा बाबा मारा गया, लेकिन अपने आप को यतीम नहीं समझना, हुसैन जिंदा है, वही सकीना ठहरी हुई थी जो 11 मुहर्रम को तमाचे खाती रही, कानों से गोलजारे छीने गए, बच्ची फरियाद कर। پروردگار جناب مسلم ابن اخیل کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما. پروردگار جناب مسلم کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جناب مسلم کی غربت کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں صحت کامل عطا فرما. جو امام کے چاہنے والے مخروض ہے تجھے جناب مسلم ابن اخیل کا واسطہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. پروردگار جناب مسلم کی بچی کی یتیمی کا واسطہ جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما اور ہم سب کو سعادت دے کہ اس سال انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں. جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ. ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رضوی صاحب کے والدین اور ان کے فرزند کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you.